Welcome to Season 2 of Rediscovering Self with Amritam. And on this season's very first episode, we have with us Ashok Uncle, the heart and soul of Amritam. What an auspicious start to the season. Amritam is an Ayurvedic lifestyle brand and wellness community, growing globally, celebrating nature, beauty and mindful living. This is your host, Shweta Dalmi, and on this season, we together take the journey of building a healthier, happier and fuller life through the power of incredibly powerful Ayurveda. Yes, it's about our health, our happiness, and that too at our own place, our very own Amritam, your Amritam. Let's get started. Hello, Ashok Uncle. आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेलकम टू रीडिस्कवरिंग सेल्फ विद अमृतम, बट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हम सबका एक्चुअली अमृतम की दुनिया में स्वागत करा, आयुर्वेदा और अमृतम और हमारा एक ऐसा सुंदर रिश्ता बनाने के लिए, जो मैं जानती हूँ सफ़र आसान नहीं रहा होगा, पर आपने अंकल किया. एंड थैंक यू दुनिया को अमृतम देने के लिए, इस दुनिया में अमृतम को लाने के लिए. थैंक यू जेन्युइनली दिल से. तो अंकल आप बताइए, लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए कौन है आप, कौन है ये स्पेशल इंसान और क्या है आपका रिश्ता अमृतम के साथ.
एक वेद मंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे. उसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि अंधकार से भोलेनाथ हमको या सूर्य भगवान हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले. चूंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि शायद कुछ जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि जितनी मेरे को जानकारी है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव है, मैं अपने अनुभव और के आधार पे और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकूं. ये मेरा बहुत प्रयास है और शुरू से ही चूंकि कल्याण का भाव रहा मन में और जीवन बहुत जीरो से शुरू हुआ है, मतलब जीरो से भी नीचे जीरो से शुरू हुआ है. और बहुत जीवन में मैं ये तो नहीं कहूँगा संघर्ष रहा, संघर्ष तो बहुत अच्छी चीज है, कड़ी मेहनत, संघर्ष, तकलीफ में परेशानी व्यक्ति को ज्ञान भी देती है और आगे भी बढ़ाती है. तो वो अनुभव तो मुझे बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैं ये रोने का कभी रोता नहीं हूँ कि तकलीफ हुई और परेशानी हुई, ये हुई तो मुझे बहुत कुछ उससे मिला. चूंकि मुझे में सीखने की बहुत ललक थी और लगभग वो पूरा हिंदुस्तान मेरा बाई रोड घुमा हुआ है, लगभग अप्रोक्सीमेट 35-40 लाख किलोमीटर में अभी तक चल चुका हूँ. और मुझे घूमने का भी शौक है, इस दरमियान कई सारे मंदिर, खासकर शिव, विशेषकर शिव मंदिरों का मैं विशेष दर्शन के लिए अभी दासी रहा हूँ, गया हूँ. और दुनिया में मुझे बहुत सारे जानकार, बहुत सारे ज्ञानी लोग मिले जो आयुर्वेद की नॉलेज रखते थे. कोई अघोर पंथ से था उनको भी नॉलेज थी, गांव के भी कई जानकार वैद, सारे लोग जो जो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग थे, तो मैं उनसे डिस्कशन करता, चर्चा करता, कब कौन सी जड़ी बूटी काम आती है, इसका नाम क्या है. जैसे अजवाइन को यवानी खांडव भी बोलते हैं, अजवाइन 4-5 तरह की होती है, सबके अलग अलग वर्ग हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में, आयुर्वेद एक तरीके से विशाल भंडार है. आप इसको मतलब अगर इतना सब होने के बावजूद भी अगर मैं बोलूँ कि 0.1% भी मेरे को नॉलेज है तो मैं कहूँगा नहीं, अभी वहाँ नहीं पहुँचा मैं. ये बहुत सहज सरल रूप में बोल रहा हूँ कि इसका तो बहुत विशाल सागर है. बस इतना ही कह सकते हैं कि इसकी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने. बस आपको जितना समझ में आ जाए. और बस ये है क्या, कल्याण का ये चिकित्सा है. अगर आपके अंदर कल्याण का भाव है, भला करने का भाव है, तो ये चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है. इसमें पैसा कमाने वाली बात अगर आप रखेंगे तो आप कितनी अच्छी मेडिसिन बनाइए, वो मेडिसिन उतना अच्छा काम नहीं करेंगी. अगर आपका भाव बहुत अच्छा है और कोई मेडिसिन आप डालना भूल गए या नहीं आपको नॉलेज है, तो वो ऑटोमेटिक काम करेगी. और मूल उद्देश्य यही है कि चूंकि ईश्वर ने जोड़ा है, मैं तो असल में एक नौकरी करता था छोटी सी कंपनी में, वहाँ से बढ़ते बढ़ते मेरे को एक कंपनी की एजेंसी मिली, डिस्ट्रीब्यूटर बना पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, कई जगह का काम किया. और फिर उसकी मर्जी थी तो मैंने 2006 में एक छोटा सा एक कमरे के अंदर शुरुआत की और 2013 में खुद का प्लांट अपनी जगह में, काफ़ी बड़ी जगह में इसको शुरुआत की है. तो वो कराने वाला कोई है, अदृश्य शक्तियाँ हैं, चाहे इसको ईश्वर माने या माता पिता का आशीर्वाद माने या अपने दोस्तों का सहयोग माने, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जीवन में वो ऊपर वाला बढ़ाता है. कुल मिलाकर भला का उल्टा शब्द लाभ होता है ना, वो चीज़ है जो मेरी समझ में आया.
अंकल मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पर, मतलब ऐसा होता है ना कि जब हमारे जीवन में संघर्ष होता है या फिर जब चीजें नहीं हो रही होती जैसे हम चाहते हैं, उस टाइम पे कहीं ना कहीं लगता है कि क्या भगवान है भी। आपने बोला कि आपने जीरो से भी नीचे से स्टार्ट किया था, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके लिए क्या संघर्ष रहा और जिस टाइम पे आप संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे अंदर से क्या चीज आपको हिम्मत देती थी कि नहीं हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ये कुछ बनेगा आगे जाके।
हिम्मत केवल एक ही चीज से आती है श्वेता जी, वो है कर्म। आप उसमें निरंतरता बनाए रखिएगा और वो निरंतरता एक दिन आपकी जो है दुर्भाग्य को भगा देगी। कहते हैं भाग भागने से आता है। लोग कहना बड़ा आसान है कि लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, इसका मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। चूंकि क्या मैं राइटर भी हूँ और मेरा अमृतम पत्रिका के नाम से गूगल पे और क्योरा पे लगभग काफ़ी मेरे ब्लॉग पड़े हुए हैं, लगभग 60-70 लाख पाठक भी हैं मेरे, तो मैं व्याख्या बहुत ज़्यादा करता हूँ शब्दों की। कि लखपति बनने का मतलब है कि आपको 1 लाख प्रयास करना है। आप समझ लीजिएगा 1 लाख अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान है, और केवल आप सपने दे रहे हैं देख रहे हैं तो भगवान नहीं है। आप भाग्य के भरोसे भगवान के भरोसे बैठना व्यर्थ है, आपको कर्म करना पड़ेगा। तो लखपति बनने के लिए 1 लाख प्रयास करना पड़ेंगे और फिर आपको करोड़पति बनना है तो करोड़, उसमें 2 शब्द हैं अलग अलग कर दीजिए, करोड़। फिर आपको होड़ करना पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा कि मैं इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। कंपटीशन कभी गिराने का नहीं होना चाहिए, कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो जब आप होड़ करने वाली बात पे आएंगे कि यार ये कुछ प्रोडक्ट में ये कमियाँ इसमें हैं, जैसे मेरे दिमाग में माल्ट बनाने की जो प्लानिंग आई वो इसी बात को लेकर आई कि जितने भी दुनिया में आयुर्वेद के और एलोपैथिक के सहारा बिक रहे हैं उसमें 70% तक, 60-70% तक केवल शक्कर या ग्लूकोज गुड़ वगैरह जो होता है। तो बहुत सारी जैसे हमारे आयुर्वेद में रस भसम है, बहुत सारी मेडिसिन उसमें डली नहीं पाती थी। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। कम से कम मेरा इतना नुकसान हुआ लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। एक जुनून होना चाहिए क्योंकि जुनून में ही सब कुछ है। हाँ। ना जून में गर्मी होती है ना वो चून माने आता जुनून में जो होता है बस वही है। तो जुनून था 2006 से करते 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 2014-15 तक मैं इस पोजीशन में आ गया कि मेरे माल्ट की जो शिकायतें हो उसमें क्या होता था, माल्ट फूलते थे। क्योंकि पहली बार प्रयोग किया तो उसमें आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा जो विशेष रूप से बहुत लाभकारी है। आंवला तो आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का लोग बहुत कम अर्थ समझते हैं कि शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को भी, मरी हुई नाड़ियों को भी वो मरम्मत करके जिंदा कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का मूल अर्थ यही है। हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, महाप्रकाश निघंटु, इस तरह के कई ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख हैं। तो आंवला मुरब्बा, हरड़ मुरब्बा और मुरब्बे से माल्ट बनाना एक अपने आप में टिपिकल काम था। ज्यादातर कंपनियां क्या सारप से माल्ट बनाती हैं। तो हमने मुरब्बे, गुलकंद, गाजर का मुरब्बा, पपीते का मुरब्बा, इन चीजों से हमने माल्ट बनाया। जैसे हमारा एक नारी सुंदर माल्ट है तो आज वो पीसीओडी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि जरूरत क्या है, जब तक आप जरूरत की चीजें नहीं देंगे, आपको प्यास लग रही हो मैं दूध लेकर आऊं या मठा लेकर आऊं तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। वही मैंने सब प्रयास किया तो बहुत बहुत ज्यादा। एक तो हिम्मत मदद दे खुदा, ये आपने सुना होगा वैसे, ये बहुत महामंत्र है दुनिया का। आप हिम्मत मत हारिए तब वो मदद करेगा, तब वो बताएगा कि हाँ मैं हूँ, तब तक फिर आप उससे दूर है। फिर आपको लगा भाग भी बेकार है, भगवान तो होता ही नहीं है, ये सब नास्तिक बातें ये लोग करते हैं क्योंकि हमारे प्रयासों में कमी है। अब करोड़ के बाद आता है अरबपति। एक बार जब आप करोड़पति बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके मन में आएगा कि यार इसमें मेरा जितनी मेहनत थी, मेरा जितना योगदान था, जितना संघर्ष कष्ट जो भी मैंने उठाया, इसमें ऊपर वाले का भी योगदान है यार 50%। तो अपन फिर 24 घंटे करेंगे आरब 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 आरब, मतलब आप समझ रहे ना। तो जब उसको याद करेंगे तो फिर वो आपके जिंदगी में ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे कि जो आपको अरबपति बनाने में मदद करेंगे। वैसे आदि शंकराचार्य ने भी ये कहा है, अगर सरल भाव से समझा जाए तो जीवन को, कि मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीना शंभु कीना, ये भाव आपकी जिंदगी के सारे अभाव मिटा देगा। मेरा अपना ये, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसके बाद आता है मैडम खरबपति। तो खरबपति का मतलब है कि जब आपके पास इतना पैसा सब कुछ हो गया तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि खारब खा रहा हो, जितना भी कल्याण का काम कर सकते हैं, स्कूल खोलना, गरीब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य को लेकर, मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, और जब ये इतना करेंगे तो आप संपत्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपके प्रसिद्धि का संग दुनिया में बजने लगेगा। तो मेरी अपनी व्याख्या है। तो बड़ा मजा आया जीवन में, बड़े आनंद किए हैं। मैं इसको कभी, ये रोना है एक तरीके का, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, सफलता को तो छुपा जाते हैं और दुख का रोना रोते हैं। दुख आना चाहिए, दुख बहुत अच्छी चीज है, कष्ट आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। संघर्ष में भी संग धन हर्ष, दो शब्दों से बनता है कि जिसके साथ हर्ष माने खुशी है, या जिसको खुशी देना चाहता है उसके ही जीवन में संघर्ष आएगा, जिसको ऊपर वाला खुशी देना नहीं चाहता ना, उसके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। विदा ना सोच है। तो इन शब्दों को चिंतन मंथन करते हुए अपने काम में लगा रहता हूँ, और मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है, और मेरा लगभग 3-4 घंटे में लगभग मेरी नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि मैंने कहीं कोर्ट पढ़ा था काफी टाइम पहले कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, बड़े लोग हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो 3-4 घंटे सो के अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो निरंतर मैं लगभग 18 घंटे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 16-17 घंटे में, क्योंकि मैं 1-2 घंटे अपने दोस्त यारों में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनसे ऊर्जा मिलती है, और यार बहुत बड़ा हथियार होती है जीवन में डिप्रेशन मिटाने वाला, बहुत अच्छी दवा है। तो मैं यारों का भी बड़ा साथ रहता हूँ। तो लगभग 16-17 घंटे का मेरा दिन भर का अपना शेड्यूल है, और बिल्कुल एकाग्रता से, ऐसा नहीं कि फिर उस काम के पीछे लगूंगा तो फिर मैं 2-3 घंटे किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मिलने भी आएगा तो मैं 1 घंटे बैठो। तो बढ़िया चल रहा है। अब रात को जब तक नींद नहीं आती है तब तक काम करते हैं। ये मैंने नींद नहीं आ रही है इसका बहाना या नींद की गोली खाना, ये सब बहानेबाजी की बात है। नींद तब तक नहीं आती है तब तक मैं कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ, खासकर लेखन कार, ब्लॉग लिखना, करना कुछ ना कुछ। जैसे मेरे को लगता है कि अब नींद आने लगी तो मैं गया और बिस्तर पे 1 मिनट में मुझे नींद आती है। नींद लेने के पहले जरूर मैं थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ देता हूँ और गहरी गहरी सांस नाभि तक ले जाकर धीरे धीरे छोड़ता हूँ, तो 5 मिनट के अंदर मुझे नींद आती है। सुबह करेक्ट 5:15 बजे मेरी नींद खुल जाती है। सुबह उठकर सीधे सादा जल, गर्म पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के अनुसार ज्यादातर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह बिल्कुल सादा पानी, मटके का हो, बस फ्रिज का ना हो, या किसी पात्र का हो, बर्तन का हो, वो पानी आप पिए। पानी पीकर आपको जो चारा है पीना, चारा पी के जो नित्य क्रम है करा के अपने सुबह लगभग 6-6:45 तक मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता हूँ। फिर हम लोग हैं, हमारे करीब 30-40 मित्र हैं, सब बढ़िया मस्त हैं, उनके साथ खूब मस्ती बातचीत करते कराते, तो हमारी एक जगह स्थान निश्चित है, वहाँ हम सब लोग पहुँच जाते हैं लगभग 7:30 तक। फिर सभी लोग बैडमिंटन खेलते हैं लगभग 1/2 घंटा 1/4 घंटा जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो 8:30 बजे वहाँ से चलते हैं, तो 9:15 बजे। और सुबह साइकिल से जाना हो रहता है मेरा, मैं मतलब 2-व्हीलर या 4-व्हीलर का उपयोग नहीं करता हूँ। लगभग मेरा आना जाना तो टोटल सुबह मेरी साइकिलिंग लगभग 6-7 किलोमीटर एवरेज हो जाती है, बाकी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। मैं घर आया, घर पर जो है अभियंग, आप समझते होंगे अभियंग किया मतलब मालिश करना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। बिना नहाए हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई भी, शुरू से हमारे माता पिता ने ये शिक्षा हमको दी थी कि बिना नहाए जीवन में कुछ मत खाना, कभी तुमको कोई बीमारी नहीं होगी, और ईश्वर की कृपा से हमारे कभी कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग बिना नहाए कुछ नहीं खाते हैं, अन्न, बिस्कुट, चाय, मतलब चाय ले लेंगे, दूध ले लेंगे, मठा ले लेंगे, लेकिन अन्न का दाना, बिस्कुट वगैरह, रोटी पराठे, ये स्नान करने के बाद 1/2 घंटे उस परमपिता परमात्मा को भी देते हैं, जिस रूप में भी, दीपक जला दिया, ध्यान कर लिया, सफाई कर ली, फूल लगा लिए, जो करना है करना है, 20-15 मिनट जितना टाइम मिलता है, जैसा समय होता है, और उसके बाद अपना जो थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करना है। वैसे हालांकि मेरी नाश्ता करने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे को 11:30 बज जाते हैं तो मैं खाना खाता हूँ, तो 2 ही टाइम खाता हूँ। बीच में मैं बार बार मुँह को जूठा नहीं करता हूँ, क्योंकि भविष्य पुराण में एक चीज लिखी हुई है कि बार बार खाने वाले आदमी का सूर जो ग्रह होता है वो पीड़ित होता है, और सूर्य से प्रसिद्धि मिलती है, सूर्य से ही आत्मबल बढ़ता है, सूर्य से ही सब कुछ अपन को मिल जाए। कहा भी गया है ना कि सूर आत्मा जगत स्थित, सूर्याद वही खलिमानी भूतानी जयंती सूर्याद ग्रह प्रजनो आत्मा नमस्तादित, बहुत लंबा वो है। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मैं बीच में बिल्कुल कुछ भी, चाय जरूर दिन भर में 4-5 बार चलती है, लेकिन अन्न नहीं खाता हूँ, बस 11 और 12 के बीच में, शाम को लौट के आया तो 8 और 8:30 के बीच में खाया, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट घूमे, लास्ट में सोते में दो गिलास पानी पिया और फिर अपने काम में लग गए, नींद आई तो सो गए, नहीं आई तो काम करते रहे। ये छोटा सा मैं इसलिए और बता रहा हूँ कि ये लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि जो लोग बिना नहाए खाते हैं श्वेता जी, उनकी जठरागनी मतलब काफी डिस्टर्ब हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बहुत कमजोर हो जाता है, लीवर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए स्नान करने के बाद ही जठरागनी में गर्माहट आती है और उन्हें कभी पित्त दोष नहीं हुआ। बीमारी की मैक्सिमम वजह जो है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वो पित्त दोष की ही कारण ही सबको हो रहा है, जो महिलाओं को पीसीओडी स्वर्ण रोग या लड़कों को जो आजकल इस पर वगैरह की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम अपना थायराइड है, थायराइड को हम बोलते हैं ग्रंथि स्रोत, ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तो उसमें क्या ब्लड का सर्कुलेशन बहाव नहीं हो पाता है। बस स्वस्थ रहने का इतना सा, अभी इसमें लगभग मैं 60 के आसपास हूँ और पर डे एवरेज मेरा 10-12 किलोमीटर पैदल चलना, साइकिल चलाना, दिन भर काम करना, मुझे अभी लगता ही नहीं, मुझे लगता है कि अभी मैं लगभग 30 और 32 के आसपास हूँ, क्योंकि वो रूटीन मेरा जब बना हुआ है ना, आदत बनी हुई है, आलस मुझे ज़्यादा कभी आता नहीं है। गुस्सा पहले बहुत आता था, क्योंकि अब बच्चों ने काफ़ी संभाल लिया तो मैं काफ़ी स्टेबलिश हो गया हूँ, तो अब गुस्सा भी मैंने जो है, क्योंकि क्रोध आदमी के बोध का नष्ट कर देता है, सोचने की शक्ति खत्म कर देता है, तो वो भी मेरा ना के बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया सा पूरा है मेरा, जितना परिवार है अंतम परिवार मानता हूँ, मेरे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, जो भी मेरे आज जितने लोगों की भी टीम है, छोटा सा ही परिवार है लेकिन वो परिवार की तरह है, उनका हर चीज़ से अपन ध्यान रखते हैं, तीज त्योहारों पे भी जैसा भी है, मतलब वो भी मानते हैं कि हम भाई साहब के अपने घर में हैं, वो आधी रात को भी कभी किसी काम, जैसे शिवरात्रि का हमारा उत्सव होता है तो पूरी टीम पूरी रात रही रहती है, चूँकि रात भर का काम मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा पाठ वगैरह होता है, एक पिता की इच्छा थी, एक पुराना कोई पुराना मंदिर था वो हमारा नहीं था, उसकी छत टूट हुई थी तो पिताजी कहाँ करते थे, तो उसका मैंने जीर्णोद्धार करा दिया था, वो मंदिर राज शिव कल्याणेश्वर के नाम से धीरे धीरे काफ़ी प्रसिद्धि पा रहा है और लोगों को उससे काफ़ी, क्योंकि नाम ही उसका मैंने इसलिए रखा कि कल्याण करने की भावना मेरी भी है तो तेरी भी होना चाहिए, तो इसलिए उसका नाम मैंने शिव कल्याणेश्वर रख दिया। ये बस छोटा सा वो है। और
नहीं अंकल, पता है आज अमृतम जहाँ भी है, आपने जैसे बताया कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या किन चीज़ों में आपका विश्वास है, मुझे लगता है कि आज अमृतम जहाँ भी है ना वो इसी वजह से है, जो आपकी सोच है इसके पीछे, जो आपकी मेहनत है इसके पीछे। और आपने बात बिल्कुल सही बोली थी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कहते हैं ना किस्मत, किस्मत भी मेहनत के कंधों पर सवार होती है।
किस्मत का मतलब है कि किस्मत अपने विचारों को, अपने कामों को, अपनी क्या है, आप आराम करना चाहते हो और भाग को दोष दे रहे हो, आप आलस में रहके भाग को दोष दे रहे हो, तो कस्मत किसी मामले में पूरा छोड़ दो, कोई बंधन नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको जब नींद आए तब नींद आराम से सोइए, जब आपको भूख लगे तो खूब आराम से खाइए, आपको भूख नहीं लग रही जबरदस्ती खाना मत खाइए। और एक हमारे यहाँ वैद्यों की कहावत है, ज्वर साधु और पाहुना लंघन देह कराए, ज्वर का मतलब है कि शरीर की सारी बीमारियों की, मतलब उसको ज्वर बोला गया है। तो जब भी शरीर में थकान लगे, आपको आलस आए, आपका शरीर बदन में गर्माहट आए, आप जो भी समझ लीजिए, ज्वर में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, मानसिक विकार हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, ये सारे ज्वर से संबंधित 88 तरह के चरक संहिता में 88 तरह के ज्वर बताए हैं। तो जब भी आपको लगे कि मुझे ज्वर हो रहा है या कोई बीमारी है, तकलीफ या व्याधि बोले आप, व्याधि और आदि और व्याधि दो चीजें होती हैं, मैं अभी इसकी व्याख्या बाद में करूंगा। तो लंघन दे कराए, लंघन का मतलब है कि बिल्कुल उसको कुछ भी खाना पीना देना बंद करो, केवल पानी दूध चाय पर उसको रख दो, जब वो कुछ नहीं खाएगा तो पेट में जो भी गर्माहट है वो मल से विसर्जन से बाहर हो जाएगी और वो आदमी स्वस्थ हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं श्वेता जी कि बीमारियां संस्कृत में उनको बोला गया आदि और व्याधि, व्याधि जो होती है वो शरीर के इतने नीचे हिस्से में होती है और आधि जो होती है वो मस्तिष्क रोग कहलाती है, जितने भी मस्तिष्क रोग हैं सारे आधि कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इनसे बचने के लिए आप ही प्रयास करना पड़ेगा, आप सोच रहे हैं कि कोई डॉक्टर आपको भला करेगा, डॉक्टर आपको ठीक करेगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना शरीर के बारे में, जितना तन और मन और धन, तीन चीजें ऐसी हैं श्वेता जी कि जिसके बारे में ज्यादातर आप ज्यादा जानते हैं, मुझे नहीं मालूम आपका धन कहाँ कितनी जगह रखा हुआ है, आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, सोने में कर रखा है, शेयर में कर रखा है, आपने क्रिप्टो में कर रखा है, कहाँ कर रखा है, मुझे नहीं मालूम, ऐसे आपके मन में क्या चल रहा है, मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, बड़े बड़े तांत्रिक आज तक मन को नहीं पकड़ पाए कि आपके मन में चल क्या रहा है। वो एक अलग बात है, थोड़ा बहुत तीर में तुक्का चल जाता है तो अपन कहते हैं बहुत बड़े संत हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। तन को ऐसी तन, आपके तन में क्या है, क्या डॉक्टर पकड़ेगा आप बताइए। तो तीनों चीजें आज तक रहस्य हैं, तन मन और धन। ये किसका कैसा है, कितना है, किस तरीके से चल रहा है, वो उसी को खुद ही मेंटेन कर सकता है। दूसरे व्यक्ति से उम्मीद करना व्यर्थ है। लोग आजकल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भाग रहे हैं, सब वो शरीर को खराब कर रहे हैं, वो दवाइयां खा खा के शरीर को इतना ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब जहरीला या टॉक्सिन क्या कहते हैं, इंग्लिश तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम, उसको बना लेते हैं कि उसका फिर कोई इलाज नहीं है। और हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो नाजुक अंग है वो है लीवर, दूसरे नंबर पर अपन गुर्दा मान सकते हैं, किडनी। और इन दवाइयों का असर इन्हीं चीजों सबसे पहले होता है। तो मेरी पहली कोशिश तो यही रहती है कि देखो दवाइयां खाओ ही मत, चाहे वो कोई सी भी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक, कोई भी मत खाओ। आप पहले कोशिश करो कि हम नेचुरल कैसे ठीक रह सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसके लिए मेहनत करो, कसरत करो, तो आप आराम से उसको थोड़ा सोचेंगे, मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन आप पड़े हुए हैं और फिर आपने कहा सिर में दर्द हुआ, गोली खा लिया, सिर दर्द, सर्दी खांसी जुकाम, ये सिर दर्द 24 घंटे की बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम ये ज़्यादा 3 दिन की बीमारी है, कोई भी ज्वर है, बुखार है, ये 5 दिन की बीमारी है, और बस कुछ नहीं है इनमें। सब में लंघन का ही प्रयोग बताए आप, अगर आयुर्वेदिक ग्रंथ देखेंगे, देखिए पूरी लाइब्रेरी मेरी भरी हुई है, अगर आपको दिखे तो देखिए पूरी ग्रंथों से लाइब्रेरी भरी है। और मेरा ये सबसे अच्छे दोस्त है, फ्री टाइम में मैं अपने जीवन में जो भी लोग पिक्चर देखने जाते थे, जब मैं छोटा था तो उन्हें 10 रुपये टिकट हुआ करता था या 5 रुपये टिकट हुआ करता था, तो उस समय किताबें बहुत सस्ती थी, तो मैं किताब पिक्चर में जाकर 5 रुपये की किताब खरीद जाता था कि यार ये मेरे काम आएंगी। और ये मेरा सारा कलेक्शन करीब 50 साल, कोई 100 साल, और जहाँ भी मुझे अच्छी किताब मिली, और कोई बाजारों किताबें नहीं है मेरे पास, आप जो भी देखिए ना सारा, और मेरे हाथ का लिखा हुआ भी बहुत सारा रजिस्टर भरे रखे हैं फ्री टाइम में अपने, जो भी रात को 2 बजे तक 1 बजे तक जब जैसा मन हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो नई पीढ़ी या युवा पीढ़ी जो भटक रही है, उनका भटकाव भी कम हो, क्योंकि वो भी सब अपने बच्चे ही हैं और उनको भगवान उनको मार्गदर्शन दे और वो कुछ प्रेरणा लें, और वो प्रेरणा खुद से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो एक सहारा भर हूँ, हल्का सा मेरे सपने हैं, वो उनके दिमाग में बैठे हैं तो अच्छी बात है। कोशिश खुद ही करना पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये तो सभी पुरानी बातें हैं, लेकिन हैं काम की बातें भी हैं, ऐसा नहीं इनको अपन व्यर्थ नहीं समझ सकते, काम की बातें, बस यही सब है।
तो अंकल आपका अमृतम में पहला प्रोडक्ट क्या था, और आप कैसे आपने प्रोडक्ट बनाया और आप उसे कैसे मार्केट तक लेके गए?
अमृतम, अमृत तो समुद्र से निकला था, मेरा तो केवल एक शब्द मैंने जोड़ा हुआ है, वो अमृतम मेरा नहीं है। अमृतम तो एक दिन पूरी दुनिया का बनेगा, एक दिन वो आएगा कि अमृतम की दवाएं घर घर होंगी, मजबूरी होगी लोगों की अमृतम की दवाएं लेना, क्योंकि उसमें मैं इतनी जान फूक चुका हूँ, इतनी तपस्या है मेरी उसमें कि भरोसा है, भले 5 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, मैं अगर नहीं जिंदा रहा तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के भी बच्चे अमृतम को घर घर पहुंचा के मानेंगे, मेरा सपना है और मैं जिद्दी हूँ, तो जिद करो दुनिया बदलो, सोच ये रही शुरू से। तो अमृतम मेरी नहीं है, अमृतम तो पूरे जगत की है, क्योंकि ये परमात्मा का नाम है मेरा, मतलब उसने दिए हुआ नाम है, अचानक दिमाग में आया, अचानक नाम रख दिया और बस उसको चलाना तो चला लाया। मैं कोई आयुर्वेद का बहुत ज्यादा जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कोई पढ़ाई आयुर्वेद से, मैं बिल्कुल बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जो भी कुछ है वो सारा बस खोज करने से मिलता गया, और खोज की तो मौज की, और मौज की हुई तो रोज की, सीधा सूत्र है।
तो आपने सबसे पहला क्या बनाया था, लाइक माल सबसे पहले बनाया था आपने?
श्वेता जी, मैंने सबसे पहले बनाया था, मैंने गायनों की माल्ट महिलाओं के लिए बनाया था, और दूसरा बनाया था हमने अमृतम गोल्ड माल्ट, चूंकि हमारा ब्रांड नेम था तो 2 प्रोडक्ट मैंने शुरुआत में बनाए थे, और तीसरा फिर मैंने बनाया एक ऑर्थो की माल्ट, जो अपना आर्थोरा में काम करता है, बात विकास में काम करता है, और तीनों के बहुत दमदार रिजल्ट आए, बहुत अच्छी, ऑफलाइन में जब मैं काम करता था तो बहुत जबरदस्त सेल आई। तो इतना सब देखने के बाद, चूँकि बच्चों के बहुत सारे मित्रों ने कहा, उनके मदर फादर को दिया है, कभी किसी को दिया, तो बच्चों को, चूँकि बच्चे इस लाइन के आदमी, दोनों बच्चे इस लाइन के नहीं हैं, लेकिन वो प्रशंसा सुन सुन के उनको लगा कि इस ब्रांड को तो, अमृतम को तो आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हो। और आज ईश्वर की कृपा से 48 कंट्री में हमारी सप्लाई है और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो केवल अमृतम प्रोडक्ट के रिजल्ट के कारण अमृतम से जुड़े, नहीं तो दोनों की लाइन अलग अलग थी, और दमदारी से दोनों काम भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो बनाने में काफ़ी बार, चूँकि मार्ट क्या है, फूलते थे, तो बहुत बार बार प्रयास करते करते वो कुल मिलाकर ऊपर वाले को मेरा प्रयास रास आ गया। बोले ठीक है, इसको बहुत परेशान कर लिए, बोले चलो एक सूत्र दे दो, तो एक फार्मूला सेट हो गया, अब वो बढ़ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। और लगभग इस समय मेरे ख्याल से शायद तो मालूम नहीं है, बच्चे देखते हैं 120 के आसपास प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन मार्केट।
जितने भी प्रोडक्ट्स, जैसे आज अमृतम की जितने भी प्रोडक्ट्स आज अमृतम की वेबसाइट पे हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट्स की जो रेसिपी होती है उसे कैसे बनाते हैं, तो वो सब कुछ मतलब आप देखते हो?
हाँ जी, पूरा सारा हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में है, और फिर हमारा खुद का निजी अनुभव है, चूँकि मार्केटिंग का काम किया है, तो लगभग पूरे हिंदुस्तान में 2 से 3 हज़ार वैद्यों से मिला, जिनमें से 200 वैद्य ऐसे रहे कि उनके बताई हुई कुछ चीज़ें बहुत काम आई, कि किसको डालना जरूरी है और किसको डालने से कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें वैद्यों ने बताई, जैसे हरड़ मुरब्बा है, तो हरड़ मुरब्बा एक अपने आप में बहुत टिपिकल काम है, तो हरड़ मुरब्बा बनाना, फिर उसको पीसना, पीस के उसको देसी घी में सिकाई करना, फिर उसको बनाना, तो एक थोड़ा सा मेहनत भरा काम तो है, लेकिन मजा आता है, मेहनत से क्या घबराना, मतलब मजा आता है। अपना उद्देश्य है कि लोगों को कुल मिलाकर मैक्सिमम फायदा हो, और ये नहीं कि उसको सालों खाना पड़े, मतलब उसको लगे कि हाँ 10 दिन में मुझे इतना फायदा है, बाकी तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, खाने की तरह है, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे आयुर्वेदिक खा सकते हो, आप लाइफ टाइम खाओ, आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहोगे। कहीं कोई आपको, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि कोई भी महिला, जैसे गायनों की मार्ट हमने जब बनाया था, तो उसका नाम बाद में हमने चेंज किया, नारी सुंदर मार्ट किया,
नारी,
हाँ, चूँकि वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी ट्रेडमार्क वगैरह की, तो नारी सुंदर मार्ट किया। तो नारी सुंदर मार्ट के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी महिला उसको अगर लगातार खा ले, तो गारंटी है कि महिलाओं से संबंधित बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसकी, वो तो कभी होना नहीं है, और बल्कि जो आजकल 40, 42, 45 के बाद जो रजो निवृत्ति जो हो जाती है, मोनोपॉज जिसको कहते हैं, वो 50-52 तक जा सकती है, मतलब आराम से, इतना उसको उस तरीके से उसमें फार्मूले में अपन ने लिया हुआ है, क्योंकि मेडिसिन सारी दुनिया में है लेकिन जानकारी की कमी है। और दूसरी बात क्या है कि ज़्यादातर जो आयुर्वेद की पुरानी कंपनियां हैं उनके फार्मूले 100 साल पुराने, ज़्यादातर सब कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ज़्यादातर सभी कंपनियां जो है 100 साल पुरानी हैं, 100 साल पुराने फार्मूले हैं, और आज के हिसाब से वो फार्मूले काम नहीं कर रहे हैं। अब आज के टाइम से बिल्कुल नए फार्मूले की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग फार्मूले की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से भी अपन ने रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को बनाया है। तो वो गायनों की जो बनाया था उसका नाम अपन ने बस परिवर्तन किया है, बाकी हमारा अमृतम गोल्ड मार्ट भी मार्केट में उपलब्ध है, ऑर्थो की गोल्ड भी मार्केट में उपलब्ध है, ऐसे हमारे पाइल्स की मार्ट भी है, ऐसे करीब लगभग 15 मार्ट हैं। और दूसरा हमारा जो अमृतम च्यवनप्राश है वो महंगा बहुत है, क्योंकि वो प्राचीन पद्धति जो 5000 साल पुरानी तरीके से अगर अपन च्यवनप्राश बनाएंगे तो वो उतना ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं और किसी चीज़ से नहीं बनाता हूँ। जैसा उसमें है कि भाई 3 महीने में जो आंवला आता है, कच्चे आंवले को ऐसे बनाना है, ऐसे प्रोसेस करना है, उस तरीके से उसको बनाया, बनने में करीब उसको 1.5 महीना लग जाता है। तो अमृतम च्यवनप्राश हमारा स्टॉक में कम रहता है, क्योंकि बन उतना ही पाता है, डिमांड उसकी बहुत बनी रहती है, और थोड़ा महंगा है, क्योंकि 400 ग्राम लगभग 2000 रुपये के आसपास। एक हमारा पुरुषों के लिए भी फैदाल गोल्ड माल्ट और कैप्सूल भी आता है, और नारी सौंदर्य कैप्सूल भी अभी हमने लॉन्च किया है, पिछले काफ़ी टाइम से डिमांड थी मार्केट में, किया है। और इस समय हमारा जो नंबर 1 पे बिकने वाला प्रोडक्ट है वो है कुंतल केयर हर्बल हेयर स्पा, नंबर 1, उसमें मेरी आत्मा लगी है, बहुत मेहनत की है इसमें। मैंने कहा मैं बाल तो झड़ने नहीं दूंगा, उगाने की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 100% लोगों के बाल झड़ना बंद हुए हैं कुंतल केयर, और कुंतल केयर हमारा कॉम्बो है, कुंतल केयर मास्क भी बनाया हमने और मास्क भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि सारा मामला तो सिर से ही संबंधित है, तो एक मानसिक सुकून उसको मिलता है क्योंकि ब्राह्मी संकुष्पी जटामासी वायुटंग ऐसी बहुत सारी उसमें मेडिसिन डाली है कि जो थोड़ा मेंटल हेल्थ को भी वो थोड़ा सा इम्प्रूव करता है और बाल झड़ना उससे ही बंद होते हैं। और लगाने के लिए क्योंकि क्या है कि आंतरिक और बाहरी दोनों चिकित्सा बहुत जरूरी है। कुंतल के भी हमारा कॉम्बो है कि हमारा गंगराज का बारे में तो इतना सारा लिखा हुआ है कि बहुत मोटे मोटे ग्रंथ है। आप ये देखिए बहुत मोटे मोटे ग्रंथ है, ये देखिए आप, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो मैंने भृंगराज शैम्पू बनाया, उसका नाम रखा है भृंगराज हेयर थेरेपी। तो वो शैम्पू भी और कंडीशनर भी है, अगर कोई महिला अनुसू या कोई भी उसको लगाता है, महिला हो या पुरुष कोई भी हो, तो उसको फिर कंडीशनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको इस तरीके से अपन बनाया है क्योंकि प्रोसेस थोड़े से लंबे जरूर है, मैं उसी प्रोसेस से चलाऊँ तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं किसी केमिकल का या किसी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जो भी कुछ कुदरत ने दिया है और कुदरत को बस वो कहा है ना कबीरदास जी ने कि ज्यों की त्यों धरती नीचे दरिया, तो वो ही मैं कर रहा हूँ। मैं उसको थोड़ा प्रोसेस को चेंज किया, बाकी तो उसकी मर्जी है।
तो अंकल आप ये बताओ कि आयुर्वेदा क्या है और कैसे आयुर्वेदा हमें एक अच्छी हेल्दी सुकून भरी जिंदगी में मदद करता है।
आयुर्वेदा मैडम श्वेता जी, ये आयु का वेद है। वेद माने ज्ञान, आयु आपको कैसे बढ़ानी है इसका ज्ञान आयुर्वेद में है और उसके उपाय बताए हुए कि आप ये ऐसे करिए, ऐसे इतने बजे उठिए, जीवन शैली कुल मिलाकर आयुर्वेद को अपन ये समझने कि वो आपको जीवन शैली या लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए वो आयुर्वेद सिखाता है। अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं या उसके मार्गदर्शन मतलब उसके हिसाब से चलते हैं तो ये गारंटी है कि 120 साल तक आदमी चल फिर सकता है। और इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी एक वो शिवानंद स्वामी है, वो 126 साल के हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है दो चार दिन पहले और वो चार पांच भाषाओं का उनको ज्ञान भी है, उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है और इंग्लिश भी उन्होंने 100 साल की उम्र के बाद सीखी। तो वो भी एक चीज बताने की है, चूंकि क्या है उनको कोई ग्रंथ पढ़ना था तो अंग्रेजी उनको आती नहीं थी, तो वो उन्होंने अंग्रेजी सीखी एक टीचर को बुला के और उससे पूरा समझा। वो पूरा ग्रंथ कोई था तो उसमें कोई कटाक्ष था किसी विदेशी या गलत लिखा था, तो उस पर उन्होंने पूरा किसी से कह के बोलते गए फिर उसको लिखवाया। तो अभी आपने देखा होगा लगभग लगभग सारे जो पद्मश्री पद्म भूषण और जितने अभी अवार्ड मिले हैं वो लगभग लगभग सारे 80-85 साल के आसपास के लोग थे। उसमें कुछ ही थे जो 60-65 के थे, बाकी मैक्सिमम जो थे 17-18 लोग, मैं उस दिन देख रहा था टीवी पे। तो आयुर्वेद आपको जीने के तरीका सिखाता है कि जीना कैसे, जिंदगी का आनंद कैसे लिया जाए। जीवन का जो आनंद है वो हम लोग आ रहे हैं आके बस कुछ नहीं, आए खाए सो गए हो गई जिंदगी चले गए। हालत ये है कि हम मर भी रहे हैं तो डॉक्टर की मर्जी से और पैदा भी हो रहे हैं तो डॉक्टर की मर्जी से, हमारी मर्जी है क्या। तो आयुर्वेद बहुत चीज सिखाता है कि आप बहुत बढ़िया रह सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, बस आपको ये फॉलो करना है, इतनी सी बात। आज जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास अनुभवों का अमूल संग्रह है।
हाँ।
अनुभवों का तो संग्रह है, पढ़े लिखे नहीं है मैं ये मानता हूं, लेकिन एक तो है बस कुछ तो है तो ठीक है।
और अंकल ये बात बहुत सच है, ये बात सच में सच है। लाइक अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस ही बताऊं तो लाइक मेरे साथ जैसा जो जो होता है मेरे पापा को पता होता है कि ऐसा होने वाला है, हम जाके बोलते हैं पापा आपने कहा था देखो एग्जैक्टली यही हुआ, तो कहते हैं मुझे पता था ना मैंने कहा था यही है और देख यही हुआ। तो मतलब हम अब सिचुएशन मेरे साथ तो ऐसी हो गई है कि मतलब जो वो कहते हैं ना मैं वही करती हूँ, मुझे पता है कि जो वो कहेंगे वही होना है, तो मुझे लगता है आप ही बता दो क्या करना है।
बच्चे आत्मा का अंश होते हैं, आप ही मान लीजिए कि परमात्मा को मैं कभी कभी मानता हूँ कि शायद सेकंड नंबर पे रख दें और माता पिता को पहले नंबर पे रख दें, क्योंकि ये तो जीते जागते हैं। हम सूर्य और चंद्रमा की तो पूजा करते हैं जो साक्षात हैं और दुनिया मारे मारे फिर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, सूर्य को जाके बस 5 मिनट के लिए आप ईश्वर मुद्रा में प्रणाम कर दो तो उसका आशीर्वाद मिलने लगेगा, आपकी आत्मबल बढ़ने लगेगा, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्या है ये डिप्रेशन, ये वो, और दुनिया के इलाज चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो चीज है।
अंकल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदा के कुछ जिंदगी जीने के तरीके बताइए जो हमारे लिसनर्स आज से ही या इसी टाइम से अपनी जिंदगी में अपनाना स्टार्ट कर सकते हैं।
एक तरीका तो देखिए क्या है सुनीता जी, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास कीजिए। एक 15 दिन आपको तकलीफ होगी लेकिन फिर वो ऐसा रूटीन बनेगा कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आपकी आंखें खुलेंगी। सुबह थोड़ा घूमना चालू करिएगा तो क्या है, सुबह की हवा सबसे बड़ी दवा है। दूसरा, वायु को आप उल्टा लिखिए, वायु को उल्टा लिखेंगे तो होता है युवा। तो सुबह की जो वायु है वो आदमी को युवा बनाती है। ये बुढ़ापा, झुर्रियां, ये निशान, वो निशान, दुनिया के ये सब ताम झाम दुनिया का, अब हमारे कुंकुमारी तेल की भारी डिमांड है। तो मैं लोगों को कहता हूँ ये तो लगाओ लेकिन साथ में कुछ और भी प्रयोग करो। तेल तो अपनी जगह काम करेगा ही, नहीं बोले अंदर हमको तो उसी से आराम मिले, मैंने आराम मिल जाए, लेकिन ये एक टाइम बाद ये भी फिर उसका आराम मिलना बंद हो जाएगा। भाई वो जितना भारी रूप से ठीक कर सकता है लेकिन आप उसको अपने शरीर से भी तो कुछ करिए कोशिश। तो पहली चीज तो सुबह थोड़ा सा उठना पड़ेगा। दूसरा, सादा पानी कम से कम जितना आप पी सकते हैं। वैसे तो यह है कि सुबह 1 लीटर पानी पीना चाहिए, नहीं तो कम से कम आधा लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। पानी सादा हो, बिल्कुल गर्म, गुनगुना बिल्कुल ना हो। उसके बाद फ्रेश होने के बाद एक आध गिलास दूध लीजिए, और दूध लेने के बाद अपने घूमने फिरने के बाद जो भी आपको, और शरीर में मालिश जरूर करिएगा। मालिश से क्या है कि ये अपनी जो सुप्त नाड़ियाँ वो जागृत होने लगती हैं, जो कड़क नाड़ियाँ, जो कड़कपन आने लगता है ना, जिसकी वजह से अपने शरीर में दर्द रहना, थकान रहना, आलस रहना, तो कुछ नहीं है। 5 मिनट लगता है नहाने के पहले, बस शरीर में लीजिए और पूरा उल्टी मालिश करके और बस धूप में खड़े हो जाइए, पूरा एक एक रोम रोम खुल जाएगा आपका। और 10 मिनट बाद नहा लीजिए, 10 मिनट लगते हैं वो थोड़ा सा आपको कुल मिलाकर ये मान लीजिए आलस और लापरवाही छोड़ना है, आयुर्वेदिक कहता है। सीधा सा सार ये है। और नहाने के बाद आप जो भी आपको खाना है, भोजन करना है, नाश्ता करना है, सुबह नाश्ते में मीठा दही जरूर लेना चाहिए, वाली 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम हो। और नमकीन दही अगर आपको लेना है तो जितना दही है उसका 5 गुना पानी मिला के लीजिए, नमकीन दही मत दीजिए। और रात को दही और अरहर की दाल कभी ना लें, क्योंकि अरहर की दाल क्या है कि पचने में बहुत टाइम लगाती है। और एक आयुर्वेद का नियम है कि जो चीज पकने में जितना टाइम लगाएगी पचने में उससे 3 गुना टाइम लगेगी। तो पच नहीं पाती तो क्या है, वो पेट में गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती है, अम्लपित्त वगैरह जिसको कहते हैं, और वो कॉन्स्टिपेशन भी करती है। और अरहर की दाल हमेशा बहुत ज़्यादा पतली खाएं, जो कहते हैं पहले टाइम में कहते थे बनियों की दाल, तो वो हमारे यहाँ लॉजिक यही है कि पतली दाल इसलिए खाई जाती है वो जल्दी पच जाए, क्योंकि पानी है तो जितना पतली वो आप खा सकते हैं खाइए। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा और ऐसी कोई खास बातें नहीं है, जो मेरा रूटीन में मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आयुर्वेद के सारे तो फिर वो व्यक्ति बहुत भ्रमित हो जाएगा। लेकिन मैं अभी तक कोरोना भी आया तो ईश्वरी कृपा से हमारे परिवार में किसी को कहीं कोई तरह की कोई क्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ और सब अपना रूटीन में काम करते रहे। बल्कि हमारे लिए तो एक रूटीन अच्छा था कि हम लगभग सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम को अपना जो है कोई भी भजन वजन या कोई भी अच्छा स्त्रोत वगैरह, चूंकि क्या है दोनों बच्चों को, मेरे को शिव तांडव का नाम सुना होगा, शिव तांडव स्त्रोत का नाम सुना होगा, हाँ, तो ऐसे बच्चों को शिव तांडव स्त्रोत जैसे शिव महिमन, शिव तांडव, रुद्राष्टकम, ऐसे लगभग 50-60 स्त्रोत उनको याद है और इनको बचपन से ही सिखा दिए थे। एक संस्कृत के गुरु जी थे, वो इस दुनिया में नहीं है, श्री श्याम मोहन मिश्रा जी, तो बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, तो कुछ उनका आशीर्वाद रहा तो दोनों बच्चों को उन्होंने, मिश्रा जी ने काफ़ी योग बनाया और संस्कृत में काफ़ी अच्छी पकड़ है, काफ़ी अच्छे स्त्रोत और बहुत अच्छा शुद्ध बोलते हैं। तो ऐसी बढ़िया चलता रहा कोरोना में भी, कहीं कोई ऐसी लगा नहीं, और वो भक्ति भजन से हमें कोई एहसास नहीं हुआ कि कोरोना कोई बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि मंत्रों से मन को शांति मिलती है, शांति मिलती है तो शक्ति मिलती है, ये इसका एक लॉजिक है। मैं जितना मेरी समझ में आया, एक मंत्र में कुछ तो प्रभाव है, आप मानो या ना मानो। अब लोग गंगा को भी नहीं मानते लेकिन गंगा तो बह ही रही है ना, आज भी गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो मान्यता है तो है। अब जो माने तो ठीक है, नहीं माने कोई बात नहीं, वो चीज़ है।
अगर आपने आयुर्वेदा से क्या लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है, लाइक कोई उदाहरण दीजिए प्लीज।
मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं, क्योंकि मैं क्या चलते फिरते ट्रीटमेंट बहुत लोगों को देता रहता हूँ। एक हमारे एक मित्र हैं धवल सिंह जी, उनके नाती को पिछले करीब 6-8 महीने से खांसी बंद नहीं हो रही थी, तो बोले मैं अब सब इलाज करा चुका हूँ, अशोक जी को मैंने कुछ नहीं करा, आप 2 चम्मच प्याज का, 1/2 चम्मच प्याज का रस लो और उसमें गुड़ मिला के गर्म करके बच्चों को चटा दो आप। और मैंने श्याम को थोड़ा सा मुलेठी की पीस लेना, काली मिर्ची मुलेठी और सेंधा नमक 3 चीज़ थोड़ा पीस कर और फिर श्याम को चटा देना। आप आश्चर्यचकित रहेंगे मैडम कि दूसरे दिन उस बच्चे को खांसी नहीं हुई आज तक, करीब वो ये बता रहा हूँ 1-1.5 साल पुराने। तो मेरे तो मैं तो बहुत ज़्यादा चलते फिर ट्रीटमेंट करता हूँ और लोग विश्वास भी करते हैं। मतलब एक को प्रोस्टेट का ऑपरेशन, मतलब मान लीजिए कल ही होने वाला था, तो मैंने एक उनको छोटा सा ये वो बना के दिया शिलाजी, तो त्रिभंग भस्म का बना के मैंने ये वैसे 10 पुड़ियाँ खाओ, आपको आप जाँच करा लेना, आपको लगे तो 5 दिन उन्होंने खा के दे दी, तो डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, बोले इतना तेजी से आराम। तो फिर मैंने उनको और पुड़ियाँ बना के दी। हमारे कमल शर्मा जी हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, लगभग 71 साल के हैं, तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, एक नहीं मतलब हजारों लोग होंगे, हमें किस किस का बताऊँ। मैंने कई लोगों का मोतियाबिंद ठीक किया है और मैं कोई तरह की मेडिसिन नहीं, बस उनको मैं बोलता हूँ कि मोतियाबिंद या आँखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, मोतियाबिंद नहीं, आपको आँखों में चक्कर आ रहे हैं, दिखता कम है, रोशनी या आंसू आना कम हो रहे हैं, केवल कुछ नहीं करिए, सुबह खाली जाकर एक पार्क में जहाँ पर दुआ हो और नंगे पैर उल्टे चलिए 250 कदम। आज मैं हुआ फार्मूला है, आपने अगर 3 महीने प्रयोग कर लिया तो मैडम आपको श्वेता जी मोतियाबिंद का शायद ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करीब तो 200-250 केस ऐसे हैं कि इनका ऑपरेशन नहीं हुआ बहुत लंबे टाइम। फिर लापरवाही की तो फिर उनको चूंकि कराना ही था तो कुछ ने कराया, और कुछ अभी तक वो नियम अपना रहे तो उनको जरूरत नहीं पड़ी, बोले हमको जरूरत ही नहीं है, कई लोगों के चश्मे उतर गए। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एकदम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, मेरे डायरी भरी रखी है उनमें सब, क्योंकि टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, याद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे अघोरियों ने अपने उपाय बताए, तांत्रिकों ने अपने उपाय बताए। मैं आसाम में बहुत जाता रहता हूँ माँ कामाख्या के मंदिर में, तो वहाँ बहुत सारे तांत्रिक अघोरी हैं मेरे थोड़े से अच्छे मिलने जुलने वाले, वो भी अपने अपने प्रयोग बताते हैं, तो वो भी करते रहते हैं। तो जैसे घर में चूहा हो जाते हैं, चूहे परेशान करते हैं, तो कुछ नहीं उनमें से एक चूहा लीजिए जो कपड़े वाली नील होती है ना, बस उसको नील में उसको नीला मतलब उसको डाल के या छोड़ दीजिए, उसको देख के सारे चूहे भाग जाएंगे, चूहे का कोई इलाज नहीं है उसके अलावा। तो ऐसे अनुभव हैं। और ये जानकारी मैं ज़्यादातर अपने कोरा पे अमतम पत्रिका करके कोरा पे या गूगल पे मैं जानकारी देता हूँ, मेरा अमतम पत्रिका मतलब गूगल पे कोई भी जानकारी पढ़ना है, और काफ़ी कॉमेडी ब्लॉग भी रहते हैं मेरे आज के हिसाब से जो बच्चों को चल रहे हैं, दिल पिल वाले ये वो इसके मोहब्बत वाले, तो वो मैं सब लिखता रहता हूँ, सबको अच्छा लगता है और हिट भी होते हैं, एक एक ब्लॉग का 3-3 लाख लोग देखते हैं। ठीक है
अंकल, मेरे आपसे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आयुर्वेदा की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है?
मैडम हरड़ 3 तरह की आती है, एक छोटी हरड़ जिसको बाल हरड़ बोलते हैं, एक साधारण हरड़ और एक बड़ी हरड़ जो हिमाचल साइड में होती है, उसका फल काफी बड़ा होता है, उसको आयुर्वेद में अभयावी बोलते हैं। अभय का मतलब होता है कि जो भय मुक्त कर देती है शरीर के रोगों से, बिल्कुल भय मुक्त कर देती है, कोई भय नहीं रहता। तो रूटीन में अगर व्यक्ति हरड़ और आंवले का मुरब्बा रूटीन में लेता रहे तो उसको जीवन में कोई बीमारी होगी ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल टेस्ट अच्छा है दोनों का, थोड़ा वो कसेला टाइप का टेस्ट है, और आंवला मुरब्बा तो आप जानते हैं वह कुछ नहीं, एक एक पीस दोनों में से ले लें मुरब्बे का और उसको, और नहीं है तो हमने तो अपना बनाया ही है, हमारे माल्ट सारे हरड़ और मुरब्बा और आंवला मुरब्बा ये तो है ही, तो अमतम गोल्ड माल्ट उसमें उस तरीके, उसमें और भी मेडिसिन है, कभी तो 45 तरह की मेडिसिन और भी है, तो वो ले सकता है, अमतम चौन पास भी ले सकता है, उसमें भी हरड़ मुरब्बा और बहेड़ा भी है और मुनक्का भी है जो बड़ी दाग बोलते हैं, किशमिश भी है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं इनका उपयोग काफ़ी करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ और लोगों को इससे बहुत फायदा होता है, एमोगाइसिस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये सब जगह काम करती है, आंखों की प्रॉब्लम में भी काम करती है और बालों में भी काम करता है, ये सब चीजें अमृत हैं आयुर्वेद।
तो आपको आयुर्वेदा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, लाइक ऐसी कोई बात आपको लगता है कि बस आयुर्वेदा यही है?
आयुर्वेद असल में एक हिसाब से मैडम अध्यात्म से जोड़ता है, मन बड़ा प्रसन्न रहता है आयुर्वेद से, मन में कोई विकार नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है, एक अलग टाइप का मन में बड़ा अच्छा भाव रहता है, क्योंकि वो सारी आयुर्वेद की किताब पढ़ेंगे तो उसमें सारा शिव ने ये किया, उसकी खोज इंद्र जो की खोज इंद्र ने, भगवान शिव ने बताई कि इंद्र जो यहाँ मिलेगी, ऐसे ऐसे किस्से कहानियां हैं, तो वो कहानी टाइप की भी बड़ा मजा आता है। तो आयुर्वेद मतलब ये मान लीजिए कि एक तरीके से ईश्वर का ही एक दूसरा रूप मान लीजिए, माता पिता मान लीजिए, माता पिता जैसे हमको जन्म देते हैं लेकिन जीवन हमको आयुर्वेद देता है, मैं ये कह सकता हूँ जीवन जो है वो हमको आयुर्वेद से ही मिलता है। अब जैसे हम घर में खाना भी खा रहे हैं तो ये सारा सब कुछ निघंटू में दिया हुआ है कि लौकी क्या काम करेगी, करेला कब खाना चाहिए, गाजर कब खाना चाहिए, प्याज के क्या फायदे हैं, लहसुन के क्या फायदे हैं, मसालों के क्या फायदे हैं, बहुत सारे मसाले दिए हुए हैं, है ना, 16 तरह के मसाले खाना चाहिए, हम लोग 4-5 तरह के मसाले खा रहे हैं, सब मसालों के अलग अलग हैं, लोगों ने क्या है कि जैसे लाल मिर्ची जरूर खाना चाहिए, लोग लाल मिर्ची नहीं खा रहे हैं इस समय क्योंकि लाल मिर्ची कैंसर रोधक है, जो कैंसर की बीमारी हो रही है वो लाल मिर्ची छोड़ने से हो रही है। सेंधा नमक की मात्रा लिमिट होना चाहिए, सारा नमक समुद्री नमक सारा खाना चाहिए क्योंकि रक्त को शुद्ध वही करता है, जो स्किन डिसीज की जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है, सारा नमक लोगों ने उनको छोड़ दिया। सेंधा नमक क्या है, सूक्ष्म नाड़ियों में जाके काम करता है, इसलिए व्रत के टाइम भी खाते थे उसको, अपनी जो नाड़ियां हैं व्रत के टाइम पे शिथिल हो जाती थी तो उनको रिचार्ज करने के लिए सेंधा नमक खाते थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि सेंधा नमक टोटली छोड़ रखा है, सादा नमक, क्यों, सेंधा नमक पे जिंदा है,
सादा नमक,
हाँ तो सादा नमक जरूरी है, मतलब ये मान लीजिए कि दिन भर में अगर 10 ग्राम सादा नमक तो 2 ग्राम आप सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसको उल्टा कर दिया है, सेंधा नमक खाना 10 ग्राम और सादा नमक 2 ग्राम खाना है, उसको क्या है कि वो गूगल पे बहुत सारी जानकारियां गलत डालती है, अब वो हो सकता है कि ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है, अब उसके पीछे क्या सोच है, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, या मन ग्रंथ या कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो कॉमर्शियल पैथी कहता हूँ एलोपैथी को, तो उसमें काफी मामला बिगड़ चुका है, बहुत ज्यादा पैसे की भूखे, और शायद आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद भास्कर में आया था कि बीमारियों के कारण दुनिया में लगभग 18-20% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो इलाज में सब कुछ बर्बाद हो गया उनका, आज कैंसर का पेशेंट है 50 लाख रुपए लग जाते हैं, हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों में 2-4-10 लाख रुपए, अभी कोरोना में एक एक आदमी के 25-25-40-40 लाख रुपए, वो कौन सा इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन ही 500-600 का इंजेक्शन, लेकिन वो 5-5 हजार में बिका। तो अच्छा दूसरी बात क्या है आयुर्वेद में कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि त्रिफला है, तो त्रिफला में जो लाखों साल पहले जो फार्मूला खोजा गया था आचार चरक ने या जो भी है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एलोपैथिक में बोले नहीं इसके साइड इफेक्ट को बंद करो, हमारे यहाँ कोई मेडिसिन आज तक बंद नहीं हुई, जो बनी हुई पहले हमारे जो हमारे आयुर्वेदाचार हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा छोड़ गए वो एज ए चीज है, वो आज भी वही काम कर रही है जैसा लिखा हुआ है, उसको चेंज करने की या बंद करने की जरूरत पड़ी, एलोपैथिक में हर रोज बंद करना पड़ता है कि जी इसको ये आज बंद कर दो अब ये नया वर्जन आ गया, वो चीज़ है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, और बस अनुपान का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे हल्दी है तो हल्दी पूरे महीने में मैक्सिमम आप ले सकते हैं तो 10 ग्राम, 8-10 ग्राम पूरे महीने, लोग एक दिन में 10 ग्राम खा रहे हैं, एक चम्मच भरी उन्होंने दूध मिलाई, बोले हम तो हल्दी क्या है कब को सुखाती है, इसलिए कुछ अनजान लोगों की वजह से या जानकारी के अभाव में आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। अनुपान का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे एक मेडिसिन हमारे आती है शुद्ध जयपाल, मैं जायफल मसाले की बात नहीं कर रहा, शुद्ध जयपाल की बात कर रहा हूँ, तो शुद्ध जयपाल क्या है कि अगर उसको ठंडे पानी के साथ लेंगे तो वो दस्त लगा देती है, लेकिन उसको अगर गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो दस्त बंद कर देती है। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन, इच्छा वेदी बटी भी इस तरह की ही मेडिसिन है, तो जादू है वो तो आयुर्वेद, तो मैं तो उसी से खा खमा भी रहा हूँ और उसकी पूजा भी करता हूँ, तो मेरे लिए तो ईश्वर का ही रूप है।
अंकल, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताओ कि आपको कैसा लगता है आज जब आप देखते हैं कि स्तुति और अग्निम ने किस तरीके से अपनी मेहनत से अमृतम को एक नई जिंदगी दी है, कुछ ऐसा करा जिससे आपकी मेहनत, आपका सपना आज हर घर तक पहुंच रहा है, आयुर्वेदा से लोग जुड़ पा रहे हैं एक बड़े स्केल पे, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे?
देखिए मैडम, मैंने बच्चों को, जब इनका बचपन था तो मेरे पास और तो कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना सकूं या बहुत ज़्यादा इनको कहीं घुमा सकूं, पिक्चर दिखा सकूं। तो बचपन से मैंने इनके अंदर सपने जरूर डाले, मैंने इनको सपने डालना शुरू कर दो, बाकी तो ये सब करेंगे। और सपनों की वजह से इन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की। स्तुति ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से SIT बेंगलोर से आर्किटेक्ट किया और अपनी अपनी मर्जी से विषय चुने और अपनी अपनी मर्जी से उन्होंने किया। और 2018 में जैसे ही इन्होंने मेरे बिजनेस को संभाला तो सही बात तो ये है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हम तुमको यहाँ तक पहुँचा देंगे। बिल्कुल बड़ा, इन्होंने भी बहुत मेहनत की एक एक चीज़ पर, उन्होंने डिजाइन पे, पैकिंग पे, कि कोई भी पैकिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो किसी को नुकसानदायक हो, हर चीज़ पे, बिल्कुल क्वालिटी पे, फिर मशीनों पर कि कहाँ कौन सी मशीनें जरूरी हैं, कहाँ आपकी ज़रूरत है। जो गाय में मैक्सिमम कोशिश मेरी हाथ की रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें तो एक हमने कोंचे की मशीन बनवाई, वो कोंचे की मशीन में क्या था कि उसमें लोहा जो कोंचा था वो लोहे का था, तो उन्होंने तुरंत उसको हटवाया, बोले नहीं लोहे की कोंचा नहीं चलेगा। कोंचा आप समझते ना, इससे कढ़ाई चलता है, कोंची बोलते हैं घर में। तो उसके लिए खोज की क्या वो पहुँचा नहीं तो क्या है, तो फिर उसके लिए सब सारा मैंने खोजबीन करने पता लगा कि बेर की लकड़ी का जो रहता है तो उस पहुँचे में बेर की लकड़ियाँ लगवाई मैंने, बेर की लकड़ी का मोटे पाटी लगवाए। तो ऐसे इन्होंने काफ़ी परिवर्तन किया। और ये लोग तो खैर बहुत ऊँचाइयाँ छुएंगे क्योंकि इनमें जज्बा बहुत है कुछ करने का। ये इनका भी भाव वही है कि कैसे हम, जैसे स्तुति का है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोल लें उसका, गरीब बच्चों को पढ़ाने का, उसको शिक्षित बनाने का उद्देश्य, वो कहती है, बच्चे कहते हैं, दोनों ही कहते हैं कि कोई भी देश शिक्षित होने से बहुत आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा भला करना यही है, आप किसी को खाना खिला दें, आप उसको कपड़े दे दें, उससे कोई भला नहीं होता है। तो उनका सपना है कि हमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी डालना है जो हर विषय पर, मतलब उसमें हेल्थ तो मेन रह गई कि आदमी को एक एक चीज, जीवन के सारे मर्म और नियम उनको बताए जाए, समझाए जाए। तो आज इन्हीं लोगों की मेहनत है, आज ये लोग 50-50, 40-40 कंट्रियाँ बाहर घूमने गए, अपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से लाइसेंस वगैरह क्या होते हैं, मैं ज़्यादा पूछता ताछता नहीं हूँ क्योंकि वो अपने बिल्कुल एकाग्रता से लगे हुए हैं। तो और अपने दम से ये लोग कॉलेज स्कूल जहाँ इनको जो करना होता है पूरा, इनका सर्किल भी आज ईश्वर की कृपा से काफ़ी बड़ा सर्किल है। और कुल मिलाकर मैं धन हूँ ऐसे बच्चे पाकर, और भगवान सभी को ऐसे बच्चे दे, बस इतना ही कहूँगा।
अंकल थैंक यू, मतलब आज आपने जो स्टार्ट किया उसके लिए, और शायद उसी की वजह से आज हम आपको सुन पा रहे हैं, आज आपसे बात कर पा रहे हैं। मतलब मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं उन्हें भी सच में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू आपने जो कुछ किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।